प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग तीन, लेक्चर नंबर 156। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम श्रद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सवसाहूणं, सुरसुर नरपति वंद्यने प्रविनाशघाति कर्मणे प्रणमन करो धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वरिशेष तीर्थंकर ने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर चरण संयुक्त ने ते सर्वने साते तथा प्रत्येकने वंदो वणि हो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने या नमस्करण करिए रीते गणधर ने अध्यापको ने सर्व साधु समूह ने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्य निजे नाथि शिव प्राप्ति मन।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका लिखी हुई है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से तीसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 99 पर हम आगे 99 ऊपर से दूसरा नया पैराग्राफ है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। वो बीच में बड़ा पैराग्राफ है ना, वहां से। जिनका ज्ञान समस्त प्रदेश से खिल उठा है ना, समस्त आत्म प्रदेशों में, इंद्रिय ज्ञान में तो कुछ एक प्रदेश खुले हुए हैं, खुले हुए ना, वहां से उसका उघाड़ उपयोग रूप पेज नंबर 99 है, 99 नीचे से दूसरा पैराग्राफ, हाँ बड़ा पैराग्राफ है ना, फिर पढ़ते। जिनका ज्ञान समस्त प्रदेश से खिल उठा है, समस्त आत्म प्रदेशों में, इंद्रिय ज्ञान में तो कुछ एक प्रदेश खुले हुए हैं, यह तो समस्त प्रदेश, असंख्य प्रदेश खिल गए हैं। जैसे कली खिलती है कली, वैसे अंदर असंख्य प्रदेश खिल गए हैं, हाँ ऐसा उपदेश, यानी सर्व प्रदेशों से वो उपयोग रूप जानना हो रहा है। समस्त आत्म प्रदेशों में परम समक्ष, समक्ष का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, ज्ञानोपयोग रूप, ज्ञान के उपयोग रूप होकर व्याप्त होने से समंत है, नाम प्रत्यक्ष है, इसलिए है अशेष द्वार खुले हुए हैं। और इस प्रकार कोई द्वार बंद न होने से आकुलता नहीं होती, यानी कुछ जानने का शेष रहा ऐसा नहीं है, तो वहां कोई आकुलता नहीं है। नीचे का पैराग्राफ, कोई ऐसा कहे कि तीन काल तीन लोक को जानते हैं तो आकुलता नहीं है, वे तो जानते हैं अपनी पर्याय को। पर्याय को जानते हैं उसमें तीन काल तीन लोक का ज्ञान आ जाता है। क्या कहते हैं? तीन लोक में तीन काल में उपयोग देना नहीं पड़ता है, उसमें आ गया ना ज्ञानोपयोग रूप होकर, यानी अपने सर्वात्म प्रदेशों में ही ज्ञानोपयोग रूप होकर केवली को लोकालोक देखने में उपयोग नहीं जोड़ना पड़ता। क्योंकि जोड़ना कब कहेंगे? हम कैसे हैं जैसे सुनने के देखने के प्रति उपयोग लगा है तो हमने वहां जोड़ा, कहां? दूसरी ओर देखने के लिए या सुनने की ओर, तो इसको उपयोग जोड़ना कहेंगे। परंतु वहां तो सभी पदार्थ तीनों काल के उपयोग रूप ज्ञान में आ रहे हैं, तो कहीं से उपयोग हटाना और कहीं जोड़ना ये बात ही नहीं रहा, ये कहते उपयोग नहीं जोड़ना पड़ता है। क्या उपयोग? समस्त प्रदेश में ज्ञान उपयोग रूप हुआ उसका नाम अनाकुल सुख है, आकुलता नहीं है ना, दो बोल हुए। अब तीसरा, ये अनाकुल क्यों है उसकी बात चल रही है। समस्त वस्तुओं के गेयाकारों को सर्वथा पी जाने से, क्या कहते हैं? सबको जान लिया, आत्मा के अलावा जितने अनंत आत्मा है, अनंत परमाणु है, उनकी तीन काल की पर्याय है, उन सबको ज्ञान पी गया, अन्य भी द्रव्यों को, सब द्रव्यों के पी गया का अर्थ पीने में मुंह बड़ा और पानी की चीज कम होती है, यह तो पी गए तीन काल तीन लोक की, भविष्य की अनंत अनंत पर्याय, भूतकाल की अनंत अनंत दशा, वह सब केवल ज्ञान पी गया है, अर्थात केवल ज्ञान में जानने में आ गया है। ऐसा केवल ज्ञान है यह सुख रूप है। हमको क्या लगता है, अरे इतनी दुनिया की सब का मार काट सब हिंसा भी उनके ज्ञान में आती होगी? अरे वो तो तीन काल की उस जीव के सभी पर्यायों की भी बातें जान रहे कोई कभी किसी काल में हिंसा करता हुआ दिख रहा है, वही भविष्य में केवली हुआ भी उनके ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा? तो सभी सभी पदार्थों के एक एक परमाणु की भी तीन काल की पर्याय जानते हैं। यह लिखा ना सर्वथा पीना, यह सुखरूप है। अभी दूसरा पैराग्राफ, समस्त वस्तुओं के, समस्त वस्तु वस्तु ने द्रव्य गेयाकारों जितने जानने लायक है, उन गेयाकारों को जितने जानने लायक है सब जानने लायक, सर्वथा पी जाने से अंदर ज्ञानाकार गेयाकारों को, गेयकार हुआ गेयाकारों को पी गया, ज्ञान में सब गेयाकार का ज्ञान हो गया, तीन काल में अनादि अनंत आत्मा अनंत परमाणु, आत्मा अनंत और आत्मा से अनंत गुने परमाणु है, यह मिट्टी शरीर आत्मा एक है और परमाणु अनंत है, ऐसे अनंत गुने परमाणु और अनंत आत्माएं सबके तीनों काल के द्रव्य गुण पर्याय को केवल ज्ञान की पर्याय पी गई है। क्या हुआ? अनंत गणे और अनंत गुणे, एक्चुअली वो साधना भी नहीं चाहिए, गुणा यानी वो तो गुणा अनंत गुणे कहते हैं, गुणे दोनों आता है, अनंत गणा और अनंत गुणा दोनों शब्द गुजराती में तो आते हैं, हिंदी में मराठी में तो हम अनंत गुणे कहते हैं। हाँ, यह धन है और यह धन है वह धन्य है, बाहर का धन धूल में कहाँ था, यह धन कौन सा? केवल ज्ञान। हाँ देखो नीचे से दूसरा पैराग्राफ, पेज नंबर 100, अभी नीचे से, हाँ वो मुंबई के ऊपर था ना, एक दो तीन चार पांच छठी लाइन नीचे, यह धन है वह धन्य है, कौन सा धन? केवल ज्ञान रूपी। बाहर का धन धूल में कहा था, यानी वो धन ही नहीं था, दुख का धन है। मुंबई में एक आदमी हीरा पहनकर निकला था, हीरा होगा 25,000 का, उसे पहनकर निकला होगा, उतने में कोई डाकू आया और हीरा लेकर मार डाला, सुख का साधन हो दुख का साधन हो गया। सुख था कब धूल में, आहा हा, पैसा तो धूल है, पुद्गल है, अजीव है, जड़ है, मूर्त है, प्रभु तो उससे भिन्न है। और वो हीरा हो सोना हो वो तो दूसरों को दिखाने का भी नहीं, तो क्या पहनने का क्या फायदा। वो हमने पहले कुछ देखा था न्यूज में, वो गोल्ड मैन कुछ दिखाया था सोने का कोट सोने का कपड़ा सब, और पहन कर निकला था बाहर, मार डाला उसको। हाँ पुणे में, पुणे के आसपास, सिर में पत्थर मारकर हत्या कर दी उसकी, पूरा सोने का, गोल्ड मैन कहलाता था वो। पूरे वस्त्र भी सोने के तारों से बनाए हुए ये ऐसे तो पागलपन, पागलपन ही कहेंगे ना। और वो पहनकर रास्ते से जा रहा था। श्रोता, धूल के दाने आते हैं क्या? ये श्रोता पूछ रहे कि धूल के दाने आते हैं ना, धूल से सब खाना पीना मिलता है। गुरुदेव श्री, दाने दाने के कारण आते हैं वो तो कहा नहीं क्या क्या दाने है वो स्वयं अपने कारण से आते हैं, पैसे के कारण नहीं आते। खाने वाले का नाम दाने दाने पर है, अपने काठियाड़ में बोलते हैं खाना नो नाम दाने दाने हो, वो तो सभी भाषाओं में आता है। यानी कि जो दाना दाने वाला है वह आएगा, तू प्रयत्न कर तो आएगा और नहीं कर तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जो परमाणु आने वाले हैं वह आएंगे, आहा हा, राग करे तो उससे आते नहीं, ऐसा कहते हैं। ज्ञाता दृष्टा हो जा, आने वाला आएगा, नहीं आने वाला नहीं आएगा। कोई कहते देखो मैंने इतने कष्ट किए तब तो आए ना, और वही उसका भाई कहेंगे मैंने कुछ नहीं किया फिर भी आएंगे, तो उसका जो शरीर की क्रिया होनी थी वो उसके कारण हुए, और जो आना था वो तो उसके कारण आया। हाँ, तेरी चीज ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा में रहकर ज्ञाता दृष्टा पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आत्मा जो स्वयं है वो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, और उसमें एकाग्र होने से ज्ञाता दृष्टा हो जाएगा पर्याय में। तेरी शांति वहां पूर्ण होगी, शांति पूर्ण होगी की बात है वो पर्याय की, और परिपूर्ण शांति स्वरूप है वो है स्वभाव की बात है। समक्ष ज्ञानोपयोग रूप होकर, कहा ना बाद में उपयोग करना नहीं पड़ता, ऐसा कहते हैं। इन्हें केवल ज्ञानी को उपयोग जोड़ना नहीं पड़ता, पूरा ही वो उपयोग रूप ही है ज्ञान, यानी एक समय में सबको अपने उपयोग में जान लेते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान उपयोग रूप होकर व्याप्त होने से, व्याप्त होने से नहीं प्रसरने से, समंत है अर्थात प्रत्यक्ष है, उसको समस्त भी कहा था समंत को। इसलिए अशेष द्वार खुले हुए हैं, अशेष द्वार खुले ने कुछ बाकी रखे बिना सब द्वार खुले हैं, और इस प्रकार कोई द्वार बंद न होने से आकुलता नहीं होती। मैंने कुछ जानने में आया, कुछ जानने से अभी रह गया तो आकुलता बनेगी, परंतु यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। लो मैं नीचे पढ़ रही थी, लो दो बोल हुए, अब तीसरा। वो फिर दोबारा रिपीट कर रहे, ये पहले बात हुई थी लेफ्ट साइड में, 100 पेज पर हुई थी सर्वथा पी जाने से, ये फिर यहाँ रिपीट कर रहे। समस्त वस्तुओं के ज्ञाकरों को सर्वथा पी जाने से परम विविधता में व्याप्त होकर, समस्त वस्तुओं के अर्थात जितने ज्ञान में जानने लायक ज्ञेय है, तीन काल तीन लोक, उन सब ज्ञाकरों को सर्वथा पी जाने से तीन काल तीन लोक का ज्ञान एक समय में आ गया। पी गया ने जान लिया सबको, पी गया का अर्थ स्वभाव में ज्ञान बहुत बाकी रहा है, ऐसा कहते हैं। अर्थात इससे अनंत गुना होता तो भी ज्ञान जान लेता। अरविंद भाई है ना यहाँ, पीलिया ने भी बहुत कैपेसिटी है उसकी, ये जाहिर होता है इससे, सर्वथा पी जाने से सारा गेय उसमें, अनंत केवली है वे गेय है। क्या कहा, एक केवल ज्ञान में अनंती के अनंत केवल ज्ञानी है वो भी उसके गेय में आ गया, उसको भी केवल ज्ञान गेयाकार में पी गया। क्या कहते हैं, अनंत केवली खाली भूत और वर्तमान के मिलकर नहीं, भविष्य में होने वाले वो उनको भी, हम आपको भी वो केवल ज्ञान रूप से, केवल ज्ञानी रूप से जानेंगे कि नहीं जानेंगे, जब हमारा केवल ज्ञान होगा वो भी उनके ज्ञान में अभी आ रहा है, ये कह रहे। तो अनंत केवल ज्ञानी उनका ज्ञान भी वो, हाँ उसको भी उसको भी गया कर में लिया, उसको भी पी लिया। एक केवल ज्ञान में अनंत सिद्ध है तो वह भी पी गया, वह गेयाकार है, पर है, पंच परमेष्ठी पर है, अनंत सिद्ध भी पर है, ये गेयाकार जो है उन सबको केवल ज्ञान पी गया। एक केवल ज्ञान का जब हम निर्णय करने जाते हैं तो उसमें इतनी बड़ी सभी बातें आ जाती है, और ये ऐसा स्वभाव मेरे पास है जो यहीं से केवल ज्ञान होने वाला है। अरे अरे ऐसी गजब बातें, अरे अरे मनुष्यपना मुश्किल से मिला, उसमें यदि ऐसा तत्व अंदर समझ में न आए तो वह पशु जैसा अवतार है। पशु में और मनुष्य अवतार में फर्क कहाँ रहा, अरे पशु भी समय दर्शन प्राप्त कर सकता है, संगी पंचेंद्रिय है, हमने देखा था ना, प्रथम उपशम भी प्राप्त करता है, उसके भी पंचलब्धि सब हो जाती है। पशु भी पेट भरता है, वह भी विषय लेता है यानी विषय सेवन करता है, वैसे ये भी पेट भरे और विषय सेवन करे, उसमें फर्क कहाँ रहा। अंदर भगवान आत्मा पूर्ण सामान्य ध्रुव, भगवान आत्मा किसको कहा, वो सामान्य स्वभाव भाव ध्रुव नित्य कायम रहने वाला, उसकी दृष्टि न हो और पर्याय बुद्धि रहे। देखो बुद्धि यानी वो दृष्टि की बात है ना, पर्याय बुद्धि ने पर्याय जितना अपने को मानना वो है पर्याय बुद्धि। तो क्या पर्याय से रहित हो जाएगा कभी द्रव्य, तो कहीं नहीं, परंतु ज्ञान में ऐसी कैपेसिटी है, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी योग्यता है, किसी को मुख्य किसी को गौण कर सके। पर्याय तो रहेगी हमेशा, परंतु पर्याय कहो भेद कहो उसको गौण करके मुख्य किसको करना है, नित्य कायम रहने वाले ध्रुव अंश को, और उसी नित्य में ही हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। पर्याय को बिल्कुल गौण रखने का अर्थ क्या है, बस उसको दुर्लक्ष करना है, बस है, पूरा छोड़ नहीं देना। आज वो आया था ना गुरुदेव के प्रवचन में कि जो दही बिलौते हैं ना मक्खन निकालने के लिए, तो क्या कहते हैं, उसके डोरी के दो है, एक जब खींचते हैं और दूसरा छोड़ देंगे तो क्या होगा, अरे वो तो रवि निकल जाएगी, दोरा ही निकल जाएगा। तो एक को खींचते हैं तो दूसरे को केवल थोड़ा ढील देते हैं, छोड़ नहीं देते, दूसरे को खींचते तो इसको ढील देते, दोनों छोड़ देंगे तो कुछ होगा ही नहीं, मक्खन ही नहीं निकलेगा, और एक को खींचा दूसरा छोड़ देंगे तो भी नहीं निकलेगा। तो ये बराबर मुख्य गौण करेंगे तो ही उसमें से वो, जैसे मक्खन लौकिक में भी ये बातें होती है वैसे यहाँ है, निश्चय नए और व्यवहार नए, ये ज्ञान के अंश है, सम्यक ज्ञान के अंश है। द्रव्य को जानना तो सही रूप से है, परंतु जब निश्चय को मुख्य किया तो अभी व्यवहार ने भेद को हमने गौण कर दिया, वो वस्तु में से निकल नहीं जाएगा, है वहां पर है, उसकी दृष्टि नहीं करना है, उसको देखना मत, उसके हाथ बंद कर देना, फोड़ना मत, कहते हैं। यानी यहां लिखा ना, उसकी दृष्टि न हो, किसकी, सामान्य की, और पर्याय बुद्धि रहे। केवल पर्याय जितना ही अपने को मानते आ रहा है वो तो निश्चय वाला, वो जो ध्रुव अंश है उसका पता ही नहीं, उसका कभी विचार ही नहीं है, तब भी मिथ्यात्व है। राग से लाभ माने तो भी मिथ्यात्व है, क्योंकि अपने स्वभाव भाव में राग है ही नहीं, वो पर्याय में एक क्षणिक भाव है, और अपने को वो राग वाला मान लिया उसने, और स्वभाव का तो उसने विचार ही नहीं कभी किया। और ये राग जो है वो विकार है, क्षणिक भाव है, परंतु वो करने से मुझे लाभ होगा, ये शुभ करने से मैं आगे बढ़ूंगा, उसके कारण मुझे मोक्ष मार्ग प्रकट होगा ये मानेगा तो ये मिथ्यात्व है, परमेश्वर सुख माने तो मिथ्यात्व है। परंतु एक समय की पर्याय जितना मैं हूं ऐसा माने तो भी मिथ्यात्व है। पूर्णानंद का नाथ प्रभु अंदर सामान्य स्वरूप में विराजमान है की बात है, साक्षात है वहां पर। किस रूप से? अंदर सामान्य स्वरूप में विराजमान है, जिन स्वरूप उसके सभी प्रदेश खिल गए हैं। कहां? केवल ज्ञान में। हाँ, उसकी बात है। देखो, ये अंदर सामान्य स्वरूप में विराजमान है जिन स्वरूप, किसकी बात चल रही है? हर एक की अपनी। हम तो बाह्य जिन स्वरूप को यानी भगवान को तो बंधन करते हैं, परंतु ये जो जिन स्वरूप ही मैं स्वयं हूं उसको कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो कहते भगवान का निर्णय होते ही इसका भी अनुभव हो जाता है। तो हमने भगवान को जाना, उनको नमस्कार किया, तभी कह सकते हैं जब अपने स्वभाव का अनुभव हो जाएगा। अंदर जो जिन स्वरूप भगवान को जाना तो हमने उस भगवान को भी सही जाना, ये कह रहे। जितने अब यहां तो केवल ज्ञान की पर्याय की बात चल रही है, जो भगवान है अरिहंत सिद्ध है उनके केवल ज्ञान जो प्रकट हुआ है वो केवल ज्ञान पर्याय की यहां बात हो रही है। उसमें कहते जितने ज्ञेयाकार है, जितने में क्या क्या लिया? अर्थात अनंत केवली है, अनंत सिद्ध है ना, 20 तीर्थंकर है, महाविदेह में लाखों केवली विराजते हैं, उन सब ज्ञेयाकार को केवल ज्ञान की पर्याय मानो पी गई है, सबको जान लिया। यह तो केवली एक उसमें से कुछ बातें भी है, परंतु अनंत आत्माएं उनके अनंत पर्याय, उस तीन काल की अलग अलग पर्याय, प्रत्येक गुण की जुदी जुदी, प्रत्येक जीव की जुदी जुदी, और वो एक एक परमाणु की कितनी होगी, क्योंकि जीवन से भी अनंत गुणे तो परमाणु की संख्या है, कोई बाकी है ही नहीं। परम विविधता में प्राप्त होकर, व्याप्त होकर, परम विविधता अर्थात समस्त पदार्थ समूह जो कि अनंत विविधता में है। कितने वेरिएशंस, कितने डिफरेंस बातें होगी उसमें, एक एक परमाणु की जो अनंत गुण, उसके प्रत्येक के पर्याय जुदी जुदी, और ऐसे अनंत, और वो तीन काल की, एक परमाणु की ओर देखो और उसकी जो तीन काल की पर्याय देखो तो भी उसमें कितनी विविधता होगी, है ना, स्पर्श की, रस की, गंध की, हमने तो चार गुण देखे है, तो गुण अनंत उसमें भी। तो कहते अनंत विविधता में है, विध विध है ना, एक परमाणु और उसकी अनंती पर्याय, दूसरे परमाणु की अलग अनंती पर्याय, एक केवल ज्ञान की अनंती पर्याय, ऐसे अनंत केवली, किसी के क्षोभम ज्ञान का भेद, ऐसे असंख्य भेद प्रकार। क्योंकि हमने देखा था ये असंख्यात लोक प्रमाण तो पर्याय समास के भेद है, और बाकी वो एक अक्षर बढ़ते हुए तो भले उसको संख्यात कहेंगे। क्षोभम ज्ञान यानी जो सबसे कम क्षोभम ज्ञान किसको है, तो सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त मुनिगोत को, उसके ज्ञान को पर्याय ज्ञान कहते हैं। उससे बढ़कर दो नंबर पर किसी के ज्ञान होगा कभी भी किसी भी एक इंद्रिय को, वो कितना होगा? तो कैसे उसके अनंत वे भाग प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद उसमें ज्यादा है, क्योंकि शक्ति हम अविभाग प्रतिच्छेदों में गिनते हैं, तो अनंत वे भाग अधिक, और तीसरा नंबर वो उसका अनंतवा भाग अधिक, अनंतवा भाग अधिक, ऐसे असंख्यात वेरिएशन तो इतने हो गए। फिर जाके किसी का असंख्यात वा भाग अधिक हुआ, अभी उसको लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात बार षट स्थान वृद्धि के स्थान होगी, तब जाके अक्षर वाला ज्ञान होगा, एक अक्षर संबंधी ज्ञान, ये दो अक्षर, तीन अक्षर, अभी उसमें अक्षर पद संघात संयोग वगैरह वगैरह बहुत सारे भेद है, जो श्रुत ज्ञान के हमने 20 भेद देखे, पर हर एक के बीच बीच में उसके समास वाले आ जाते हैं। यानी ये इतना लंबा चौड़ा जो जिसके भेद है, ज्ञान के भेद, यहाँ क्या लिखा देखो, किसी के क्षोभम ज्ञान का भेद, ऐसे असंख्य भेद, असंख्य लिखा ना, अनंत तो नहीं कहा, असंख्य भेद, ये सब जो जगत की विविध चीज है उन सबको भगवान का ज्ञान एक समय में पी गया। अब एक समय में कोई किसी का क्षोभम है, हमारा भी प्रति समय क्षोभम हीनाधिक होता रहता है ना, कभी कम होता है कभी अधिक होता है कुछ, तो अपनी योग्यता से उसमें वधगट होती रहती है। और वो तीन काल के सभी समस्त और ऐसे अनंत जीव होंगे, अभी भी जो केवल ज्ञानी सिद्ध परमात्मा जो है उनके भी जो सब संसार अवस्था में थे, अनादि से जो निगोद से निकले थे, तब कैसी कैसी अवस्था होते होते उनके भी कभी पंचेंद्रिय हुए, कभी एकेंद्रिय हुए, कभी द्विंद्रिय हुए, कभी निगोद में अनंत काल बिताया, तो ये सभी जो क्षोभम के भेद उनके ज्ञान में आ गए। तो कहते सब जो जगत की विविध चीज है उन सबको भगवान का ज्ञान एक समय में पी गया। देखो और वो भी उसको प्रत्यक्ष कहा, ये हमारी आपके तो पर्याय होने वाली है, हो चुके वो अभी नहीं है विद्यमान। उनके थे वो केवली के ज्ञान में वर्तमान में प्रत्यक्ष है, वो विद्यमानवत यानी विद्यमान ही है वहां पर, और उसके लिए तो सारे द्रव्यों ने अपने वो भूत भविष्य की पर्याय उनमें समर्पित कर दी, प्रमेय कर दी। इसलिए वह अनाकुल ज्ञान अनाकुल सुख का कारण है, क्योंकि कुछ ज्ञान से परे हो जाए हम जान नहीं सकते ऐसी बात होती है तो अकुलता बनी रहती है, बाकी कोई सुख का कारण नहीं है। बाहर में पैसे इज्जत कोई सुख का कारण नहीं है, और उसी को सुख का कारण मानकर उसके पीछे जीव पागल है। इंद्रिय ज्ञान सुख का कारण नहीं है तो तेरी धूल तो कहाँ रहेगी। देखो बारंबार धूल कहकर जिसको धन का प्रेम है उसको गुस्सा आता है, ये ऐसा क्या धूल धूल कह रहे, हमने इतने मेहनत से कमाया, पूरी जिंदगी लगाई और ये ऐसा एम्पायर सब खड़ा कर दिया और इसको धूल कह रहे। श्रोता पूछते हैं पुत्रादि सुख का कारण नहीं, पुत्रादि तो पर है, वे सुख का कारण थे कब। ऐसा भी होता है ना कि बहुत साल से पुत्र नहीं तो माँ बाप को बहुत आकुलता हो रही है, तो कहते हैं कि सालों के बाद उनको पुत्र हुआ। ये तो कैसा हुआ, जैसे मन्नत मांगी जो कुछ किया होगा, या डॉक्टर उनके जो जैसे हाँ घूमे इधर उधर और मिल गया पुत्र। अब वो पुत्र बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ तो एक भी माँ बाप जैसा चाहते वैसा तो बिहेव नहीं करेंगे, तो अभी वही दुख का कारण बन गया। अब रात दिन रो रहे हैं माँ बाप, क्या
नहीं होता
फिर अपने नसीब को कोसेंगे, अरे मैंने क्या पाप किया था कि ऐसा मिला, और वो हुआ तो कैसा आनंद मनाया होगा। ख्याल में थे? ये तो लौकिक में देखते ना बाहर, यहाँ तक कि देखते कि वो तो बेटे भी कोई माँ बाप को या बाप को पैसे के लिए खून कर दे, होता है ऐसा। खाली अन्य मतियों में नहीं, जैनियों में हमने कहाँ देखा, तो 1980 में हम गए थे फिरोजाबाद, बहुत बड़ी धर्मशाला है, और वो धर्मशाला बांधने वाले को उसके लड़के ने मार दिया था, जैनी। कुछ कुछ चल रहा था, मगर वो तो यानी ऐसी चीजें होती है। देखो यहाँ क्या कहे, पुत्रादि सुख का कारण नहीं, पुत्रादि तो पर है, वे सुख का कारण थे कब। पुत्र है वह आत्मा को कहाँ है, यानी आत्मा के पुत्र होते हैं क्या सारे जीव अनादि से। आत्मा को राग नहीं है, क्योंकि उसके जो आत्मा किसको कहेंगे, जो नित्य ध्रुव कायम रहने वाला जो स्वभाव भाव है उसको हम आत्मा कहते हैं। वो आत्मा में यानी आत्मा को तो राग नहीं, वो पर्याय में उत्पन्न हुआ है, एक समय का है, वो क्षणिक है, एक समय की पर्याय भी आत्मा की नहीं तो फिर पुत्र कहाँ से आया। कठिन बात है बापू, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, अर्धांगना कहते ना, अर्धांगना मेरी अर्धांगना है, भाई कहते मेरे घर वाले हैं, धनी कहता है मेरी घर वाली है, घर तेरा था कब, सुनना गप चलती है पागलपन, ऐसा कहते हैं। श्रोता पूछते तो बोलना कैसे, दूसरी बोले कौन, बोले जड़ा। हाँ हाँ, और ये क्या है, हमें कोई ऐसा टोके नहीं, इसलिए कहते केवल बोलना कैसे सीख जाता है, क्योंकि अभी शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है तो शास्त्र की बात बोलना चाहता है, तो पूछता है कैसे बोलना चाहिए, यानी वो भी बोलने पुरता मर्यादित है, कैसे मान्यता ठीक करनी चाहिए वो प्रश्न नहीं उठता है। हाँ, ये सही मान्यता बोल रही तो फिर बोलना कैसे कह रहे हैं। देखिए बोले जड़, फिर श्रोता पूछते ये पागलपन कहाँ से आया, समाधान अनादि से है, अज्ञान में पर्याय बुद्धि में द्रव्य देखा नहीं, ऐसी पर्याय बुद्धि में अज्ञान पड़ा है। पर्याय बुद्धि ने पर्याय जितना ही अपने को मान कर बैठा है अनादि से, ये सिखाना नहीं पड़ता। हाँ, अगर उसको द्रव्य दृष्टि करनी है तो ज्ञानी से वो सही बात समझेगी, स्वयं सुनेगा, सोचेगा, उस पर विचार करके निर्णय करेगा, तो ही उसकी द्रव्य दृष्टि प्रकट हो सकती है। हाँ, उसके लिए निमित्त है, वो भी अपने से ही होगी, कोई पर उसको करा नहीं देगा। तो ये ऐसा अनादि का ज्ञान, क्योंकि अनादि से है ना, है तो कहते अनादि से है। अज्ञान में पर्याय बुद्धि में द्रव्य देखा नहीं, क्योंकि द्रव्य पर्याय मिलकर पूरी वस्तु है, और इसने अनादि से पर्याय जितना ही द्रव्य को मान लिया है तो उसने द्रव्य को देखा ही नहीं है। ऐसी पर्याय बुद्धि में अज्ञान पड़ा है, साधु हुआ तो भी अज्ञान पड़ा है। क्या कहा, साधु कैसे हुआ? हाँ, दिगंबर साधु हो गया। क्या माना था उसने, क्योंकि शरीर में हूँ ये राग भाव है, कौन से व्रत पालन करने का राग जितना मैं हूँ, ये पर्याय बुद्धि चालू रहे। बाहर में कहता है ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं ये ऐसा नहीं, मैं वैसा, तो ये व्रत पालने से ही मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे मोक्ष होगा, ये मान्यता पड़ी उसके पीछे, यही कहते हैं कि साधु हुआ तो भी अज्ञान पड़ा है। तो दिगंबर साधु अनंत बार हुआ, तो अनंत बार कौन हो सकता है जो मिथ्या दृष्टि है। भावलिंगी संत हो तो अनंत बार वो भावलिंगी संत थोड़े हो गए, वो तो 32 बार मैक्सिमम हो सकते हैं, वो भी अनेक भोग करेंगे उसकी अपेक्षा से, पूरा इन्हें अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में मैक्सिमम हो सकते तो इतने। हाँ, नहीं तो लगातार देव का मनुष्य ऐसे 32 नहीं हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। क्या कहते हैं यहाँ पर, दिगंबर साधु अनंत बार हुआ, ये मिथ्या दृष्टि ने वो, देखो मिथ्या तो अवस्था में द्रव्यलिंगी साधु यानी वो निरतिचार पालन करने वाला, वो भी उत्तम सहनन वाला, तीन ऊपर के उत्तम सहनन हो गए तो ही, और आयु बंद के समय वैसे परिणाम हो तो ही, क्योंकि उस समय शुक्लेशा के परिणाम होने चाहिए, पीतलेशा वाला पद्मलेशा वाला नीचे के देवों की आयु बांधेगा, यानी सब ये ऐसे कंडीशंस होते हुए किसी ने आयु बांधी तो कितने रेयर हो जाएगी बात, तो भी ऐसा उसने अनंत बार आज तक किया है, क्योंकि अनादि से कितना काल गया है हमको ख्याल में नहीं आता है। इसलिए यहां कहते कि पंच महाव्रत पाले, 28 मूल गुण पाले, किंतु वह तो राग है, और वो राग मेरा है, करने लायक है, हा? उसी से वितरागता होगी, ये मान्यता उसके पीछे, ये है पर्याय बुद्धि अज्ञान। राग की क्रिया में आनंद नहीं तो उसमें भी अज्ञान से दुख हुआ है, उसमें भी अज्ञान से दुख हुआ था। मुनिव्रत धार अनंत बैर ग्रेवे को उपजायो, मुनिव्रत धार अनंत बैर, बैर ने बार ग्रेवे को उपजायो, तो भी आत्म ज्ञान बिन सुख लेश सुख न पायो, वह सब दुख है, क्योंकि राग है वह दुख है, उसने केवल राग को ही करते करते वही मोक्ष मार्ग मान बैठा है, यह अज्ञान है उसका। प्रयत्न तो उसके मोक्ष के लिए कहता था, पर तो सही उसने पकड़ा नहीं है, ये आगम का जो मूल बात है उसको पकड़ा नहीं बराबर, तो वह सब दुख है। पंच महाव्रत का परिणाम आश्रव है, दुख है। भगवान आत्मा दुख से भिन्न है, उसका ज्ञान किया नहीं तो चार गति में रूला ने जन्म मरण करते हुए भटका। साधु होकर नग्न दिगंबर, हाँ कठिन बात है भाई, है ना, और लोगों को तो बाह्य की ही महिमा आती है, और ये तो स्वयं तो अभी अज्ञान दशा में है, तो उपदेश भी वैसा ही करेंगे कि ये हुआ व्रत, अभी इसके आगे का ये पालो तो इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। गेयाकारों को सर्वथा पी जाने से परम विविधता में व्याप्त होकर विविध प्रकार यानी परमाणु पर्याय आत्मा आदि अनंत पदार्थों में विस्तृत है। इसलिए सर्व पदार्थों को जानने की इच्छा का अभाव है। सबको जान लिया ना अभी, और इच्छा क्यों होगी? अभी उसके कुछ जानने में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है ही नहीं है। भगवान को कुछ जानने की इच्छा है नहीं, पूर्ण जानते हैं। और इस प्रकार किसी पदार्थ को जानने की इच्छा न होने से आकुलता नहीं होती। लो विशेष कहेंगे। एक सौ तीन नंबर की पेज प्रवचन सार 59 गाथा चलती है। फिर से यहां से लेते हैं। देखो उनको तो कंटाला नहीं आता है, उनकी तो ये भावना है कि ये जो बात है उसमें से थोड़ी, हाँ सब लोग इसको पकड़ ले, जान ले बराबर सही रूप से उसको। यह प्रत्यक्ष ज्ञान तो अनाकुल है। क्या कहते हैं? केवल ज्ञान जो प्रत्यक्ष है यह सुखरूप है। अतीन्द्रिय ज्ञान वो अतीन्द्रिय सुखरूप है, ये बात अपनी चल रही। अनाकुल है, सुखरूप है। यह इंद्रिय ज्ञान जो है वह दुख रूप है। पहले बताया था ना, वो है या छोड़ने लायक क्यों कहा है, तो वह अकुलतामय है, दुखमय है, दुख रूप है। पुण्य पाप का भाव तो दुख रूप है ही, परंतु इंद्रिय से पराधीन ज्ञान करता है यह भी दुख रूप है। अतीन्द्रिय केवल ज्ञान एक ही सुख रूप है। प्रत्यक्ष ज्ञान तो अनाकुल है। पहला शब्द है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान तो अनाकुल है ना। वहां ये बारंबार शास्त्र में से निकाल कर बताते कि ऐसे है। देखो लिखा है कि नहीं, यहाँ पर है ना, यहाँ पर मूल गाथा में है, टीका में है, अमृतचंद्राचार्य की टीका में, जयसेनाचार्य की। प्रत्यक्ष ज्ञान अनाकुल है, अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान केवल ज्ञान जो आत्मा में से उत्पन्न होता है वह सुखरूप है ना। क्योंकि अब कारण देते हैं, अनादि सामान्य रूप स्वभाव पर। यह स्वभाव कैसा है? अनादि का है, और इसको सामान्य कहते हैं। पर्याय होती उसको विशेष कहेंगे, और यहाँ सामान्य। यहाँ केवल ज्ञान विशेष पर्याय की बात होने वाली है, तो ज्ञान सामान्य कह दिया। तो कहते कि अनादि ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव पर भगवान ज्ञान स्वरूप ध्रुव, ध्रुव सामान्य ज्ञान, सामान्य आनंद, सामान्य शांति, जो ध्रुव सामान्य सदृश शक्ति पड़ी, सदृश ने अनादि से एक सदृश रूप पड़ी, सामान्य रूप ध्रुव। हा हा, श्रोता के लिए सामान्य न समझाए ये जानबूझकर पूछ रहे गुरुदेव श्री, न समझाए। यहाँ तो सामान्य का मतलब वर्तमान पर्याय बिना की चीज, पर्याय जो है उसके बिना की चीज, जैसे कि सोना। सोने को सामान्य क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी अंगूठी आदि जो अवस्था है उससे रहित जो चीज है उसे सामान्य कहते हैं, और अवस्थाएं अंगूठी कड़ा आदि हो उसे विशेष कहते हैं। तो यहाँ क्या कहा? विशेष बिना की चीज। तो आप मुझे सोना लेके आपके घर में बहुत है ना, कि जिसमें कोई विशेष न हो, बोलो क्या लाओगी? मैंने ये कहा ऐसा सोना लेके आना कि जिसमें कोई विशेष न हो, पर्याय बिना का। हाँ लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी। हाँ आप क्या कहेंगे उमा बहन? उन्होंने कहा उनके पास है लकड़ी है, हमारे मनीषा बहन में कहा था बिस्किट है करके। हाँ पर्याय के लकड़ी भी वो पर्याय हुई, बिस्किट है वो पर्याय हुई। हाँ तो पर्याय का बिना का कोई द्रव्य नहीं होता, पर्याय बिना कोई नहीं होता। परंतु सामान्य जो देखते, जब हम सामान्य की दृष्टि से देखते तो उसमें कोई पर्याय दिखे तो वो सामान्य नहीं रहा। जब हम कहते हैं हमारे पास, घर के बुजुर्ग कहेंगे हमारे पास इतना सोना है, इतना सोना है देखते हैं, तो सोने की केवल दृष्टि से ही वो देखते हैं, वहां बंगड़ी है कि हार है कि किसका है, कौन से बहू का है, वो नहीं देखते। हमारे घर में इतना सोना है उसका अर्थ क्या है? उन्होंने पर्याय को गौण करके केवल सोने को देखा, इसी को कहते पर्याय बिना का। और यहां हम अपनी बात करते तो पर्याय को बिल्कुल हकाल बाहर निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञान की अपेक्षा सामान्य विशेषात्मक ही वस्तु तीन काल में रहेगी। दृष्टि में देखना है तो दृष्टि में देखते समय भी ज्ञान ने उसको गौण कर दिया और दृश्य ने केवल उसको स्वीकार कर दिया। ये दृष्टि का कार्य जो है, जिन्हें श्रद्धा का कार्य, वो मुख्य गौण कार्य का श्रद्धा का नहीं होता। मुख्य गौण तो ज्ञान में होता है, ये सारा कार्य करने वाला तो ज्ञान ही, ज्ञान बताता है ये सामान्य है ये विशेष है। श्रद्धा ने किसको पकड़ा? सामान्य को। अब तक अनादि से क्या करते? पर्याय जितना ही मैं हूं ऐसा मानकर बैठे। अब क्या करना है? ज्ञान ने बता दिया ये पर्याय है ये सामान्य है, और अभी उसकी तो चर्चा चल रही है। और दृष्टि ने अपने को कैसा स्वीकार लिया? नित्य ध्रुव कायम रहने वाला। तो उसको अगर हम पर्याय उसमें है ऐसा कहेंगे तो उसको पर्याय दिखी, तो उसने सामान्य को देखा कि पर्याय को देखा? क्योंकि ज्ञान ने, जिसको शुद्ध नहीं कहते, निश्चय कहो आप, तो ज्ञान ने बताया कि ये निश्चय वस्तु है। कौन सी? जैसे हमारे जो गहने उसमें है ये सोना है, तो ज्ञान ने तो पर्याय को भी जाना है और वो सोना को भी जाना है, तो ज्ञान ने बताया ये सोना है। और दृष्टि ने क्या स्वीकार किया? हाँ ये सोना है। उसने वो दृष्टि पर्याय को नहीं गौण कर, गौण ज्ञान ने किया था, ज्ञान ने जिसको मुख्य करके बताया था दृष्टि ने उसको अपने रूप से स्वीकार कर दिया। तो दृष्टि का कार्य क्या हुआ? ये मैं सामान्य रूप हूं, तो मैं पर्याय रूप हूं ऐसा उसने माना, तो पर्याय दृष्टि हो जाएगी। ये सारा कार्य ज्ञान में हो रहा है, श्रद्धा ने उसको स्वीकार कर दिया। जिसे निश्चय न कहो या शुद्ध न, भूतार्थ है क्यों कहा, उसको ही आदरणीय है, उसी को स्वीकार कर लिया। परंतु निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों को ही सही रूप से जानना आवश्यक है। बिल्कुल हम उसको उड़ा ही देंगे, व्यवहार ने का विषय ने भेद, व्यवहार ने का विषय ने पर्याय, पर्याय को अगर उड़ा ही देंगे हम तो उसका ज्ञान सही नहीं रहेगा। ये सही होना चाहिए ज्ञान, ज्ञान सही भी होने, पर्याय को पर्याय रूप से, निश्चय को निश्चय रूप से जाना ज्ञान ने, और दृष्टि ने उसको निश्चय को मय रूप से स्वीकार कर दिया है। ये सब जैसा है वैसा उसका बैलेंस रखना पड़ेगा। ज्ञान का कार्य क्या है? श्रद्धा का। क्योंकि अगर व्यवहार नए और निश्चय नए, ये सम्यक ज्ञान के ही दो अंश है, सम्यक शुद्ध ज्ञान के, यानी दोनों को सही रूप से स्वीकारना चाहिए, जानना ही चाहिए। ज्ञान के लिए वो दोनों ही जानने योग्य है। श्रद्धा ने ये हेय वाली बात श्रद्धा में होती, ज्ञान में जानने की बात होती। ज्ञान के तो ज्ञेय है, और दोनों को सही रूप से जैसा है वैसा जानना है। ये निश्चय को हमेशा मुख्य करते हैं, क्योंकि उसी में हमको अभी एकाग्र हो जावे हम, स्वरूप से धारण करके उसको ग्रहण करके, तो ही जो होने वाली पर्याय है वो तो सम्यक रूप से उत्पन्न हो जाएगी। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये सेकंड पैराग्राफ में था ना, अनादि ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव पर, ये सामान्य का अर्थ होता है। भगवान ज्ञान स्वरूप ध्रुव, ध्रुव सामान्य ज्ञान, ये हुआ था ना, नीचे थे हम, नीचे के पैराग्राफ में गुरुदेव समझा रहे थे ना, सामान्य न समझा उसका अर्थ, नीचे के पैराग्राफ में। हाँ देखो, पर्याय जो है उसके बिना की चीज, जैसे कि सोना, यहाँ तक हम आ गए थे। सोने को सामान्य क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी अंगूठी आदि जो अवस्था है उससे रहित जो चीज है उसे सामान्य कहते हैं, और अवस्थाएं अंगूठी कड़ा आदि हो उसे विशेष कहते हैं। ऐसे भगवान आत्मा, ये तो अलौकिक बात है बापू, दुनिया में कहीं मिले ऐसी नहीं है। सामान्य नि एक रूप रहने वाला चैतन्य घन प्रभु, विज्ञान घन चैतन्य अतीन्द्रिय आनंद घन। देखो बहुत महत्व की बात है, क्योंकि हम विचार करते तो पर्याय जितना ही विचार करते हैं, कि अभी हम बहुत अशुभ कर रहे थे, अभी शुभ कर रहे हैं, अभी हमको स्वाध्याय करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, ये करना है करना है, ये तो वृत्ति का उठना है, वो भी पर्याय पूर्ता है। यहाँ तो ध्रुव सामान्य है, वो ख्याल में लेना है, क्योंकि पर्याय है, पर्याय को तो हम द्रव्य से बाहर नहीं, परंतु क्षणिक है, वो बहुत एक छोटा अंश है, और परिपूर्ण द्रव्य वहां सामान्य अंश परिपूर्ण है, वो वहीं पर पड़ा है, क्योंकि पर्याय उसके बिना होगी कहां। नित्य अंश अनित्य अंश दोनों मिलकर पूरी द्रव्य, सामान्य विशेषात्मक ही द्रव्य होता है। हमने केवल विशेष जितना ही विचार किया, और विशेष में ही कुछ ना कुछ करना धरना चाहते हैं। मार्ग क्या है? ये जो ध्रुव वस्तु है, वो ध्रुव वस्तु को पहले में पहले ज्ञान में नक्की करना है। तो कहते कि सामान्य ध्रुव वो है थे ना, सामान्य नाम पर्याय बिना की चीज, नीचे से तीसरी लाइन, राग बिना की तो है ही, परंतु वर्तमान पर्याय बिना की चीज। क्योंकि सामान्य कहते तो उसमें कोई पर्याय नहीं दिखेगी। सामान्य ध्रुव नित्यानंद, नित्य ध्रुव वह सामान्य है, ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव। आहा, ये बात तुम्हारे हिसाब की पुस्तक में आए नहीं, उसमें दूसरी तरह की बातें। यहां तो कहते हैं कि प्रभु तू है कि नहीं, तेरा अस्तित्व है कि नहीं है, तू वस्तु है कि नहीं है, तू एक चीज है कि नहीं, वह त्रिकाली ध्रुव चीज है, उसे सामान्य कहने में आता है, और अवस्था दशा पलटे पलटे उसे विशेष कहने में आता है। मैं चीज हूं, चीज हूं, मैं हूं ऐसा कहते तो कायम रहने वाला कोई है, तभी तो मैं हूं ऐसा कह रहा है, और उसकी अवस्था पलटती रहती है, तो उसको विशेष कहते हैं। यहां तो सामान्य नाम त्रिकाली भगवान अंदर विराजमान है, पूर्ण स्वरूप, एक रूप, सदृश ध्रुव सामान्य, इतने तो विशेषण दिए। क्या कहा? क्योंकि अनादि से कोई ना कोई पर्याय रूप हो रही है, यानी अनादि अनंत तो कोई ना कोई पर्याय होती रही है, और हर पर्याय के साथ सामान्य तो वही का वही वही का वही वही का ध्रुव रूप चल रहा है, लेकिन इतने तो विशेषण दिए उस पर अर्थात स्वभाव पर, महासामान्य रूप स्वभाव, महासामान्य रूप स्वभाव, हा हा, उस पर महाविकास से व्याप्त होकर, सामान्य को भी महासामान्य कहा, और उसमें वो महाविकास होकर, ये जो केवल ज्ञान की बात बताने वाले, व्याप्त होकर पर्याय दशा महाविकास होकर जो शक्ति और सामान्य रूप ध्रुव है, उसके अवलंबन से, अवलंबन लिया है ने, हाँ, उसी को लक्ष्य करते हुए पर्याय उत्पन्न हुई है, तो कहते उसके अवलंबन से उसकी पर्याय में अवस्था में महाविकास रूप प्रकट होकर, ये जो स्वभाव में शक्ति पड़ी थी वो पर्याय में प्रकट हो गई। ये तो दुनिया से अलग तरह की बात है भाई। हाँ हाँ, महाविकास से व्याप्त होकर कौन पर्याय अवस्था सामान्य ऊपर त्रिकाल ध्रुव ऊपर वर्तमान में पर्याय में पूर्ण विकास होकर व्याप्त होकर स्वतः ही रहने से, अर्थात पर्याय अपने से रहती है, पर्याय अपने से रहती है, द्रव्य के आधार पर नहीं रहती, अपने से रहती। हमने सारे षटकार देखे थे, है ना, अपने आधार से रहते, अपने में से होती है, अपने लिए होती है, यहाँ तो अपने से होती है, अपने से रहती है, लिए पर्याय में जो केवल ज्ञान हुआ वह अपने आधार से रहा है और स्वतः उत्पन्न हुआ है। कल तो कहा था इस विषय पर, बहुत कहा था, आज तो फिर से लिया है। आहा हा, यह शरीर वाणी मन जड़ है, उसकी बात यहाँ नहीं है। ये तो अत्यंत भिन्न पर पदार्थ है, तो ये तो कोई अन्य मति के जिसको कोई अता पता नहीं वो भी, अरे अभी तो बोल रहा था, चल रहा था, ये पड़ गया यहाँ, तो शरीर पड़ा रहा, ये तो चला गया, जीव इसको छोड़कर चला, इसके प्राण उड़ गए, कहते हैं कि नहीं कहते? तो शरीर से भिन्न था तभी तो निकल गया ना, वो तो बहुत आसान चीज है समझने के लिए, उसकी तो बात भी यहाँ नहीं कहेंगे। परंतु के अंदर पुण्य पाप का भाव होता है वह भी भिन्न है। अब यहाँ तो उससे भी आगे सूक्ष्म बात चलने वाली, उसकी बात नहीं है। पर्याय में जो विचार आदि का क्षोभशम है वह भी नहीं है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव को यहाँ सामान्य ज्ञान कहते हैं, आहा, यानी वो तो ज्ञान की पर्याय को भी यहाँ नहीं लिया जो क्षोभशम ज्ञान की पर्याय। यह सामान्य ज्ञान, ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव, यह स्वभाव में केवल ज्ञान पर्याय को भी नहीं लिया। अभी वो तो केवल ज्ञान पर्याय उस पर विराजमान है या उसमें व्याप्त होकर रहती है, ऐसा अभी आएगा। तो कहते ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव कायमी त्रिकाली, उस पर महाविकास से व्याप्त होकर, केवल ज्ञान की पर्याय महाविकास से व्याप्त होकर अर्थात प्रसर कर स्वतः ही रहने से केवल ज्ञान अपने से रहा है। निश्चय से केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, वह षटकारक से उत्पन्न होती है। देखो अभी आपने षटकारक के 3-4 लेक्चर सुने हैं, तभी थोड़ा ख्याल आया होगा। नहीं तो क्या होता है षटकारक, केवल हमने 6 कारक के नाम याद किए परंतु उसका भाव भाषण नहीं होता, ख्याल में आती है बात। केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। देखो हरेक पर्याय के प्रत्येक पर्याय स्वयं अपने से अपने में होती है, अपने ही करण, वो करण है उसका संप्रदान अपदान सब उसमें आते हैं। तो यहाँ उसको षटकारक से उत्पन्न होती है। केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान, यहाँ का विषय क्या है? वो प्रत्यक्ष ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान, वो अतीन्द्रिय सुख है, और इंद्रिय ज्ञान वो परोक्ष है, वो तो दुख रूप है। तो केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, यह इंद्रिय ज्ञान पराधीन दुख रूप है। यह वकालत का ज्ञान, डॉक्टर का ज्ञान, यह आपका क्या कहते हैं, लादी का ज्ञान, हीरे का ज्ञान, कोई व्यापारी है ना वहाँ लादी के व्यापारी, हीरे के व्यापारी, वह तो कुज्ञान है। हाँ हाँ, जो तो कहे उससे पैसे आते हैं ना देशरी, पैसे धूल भी आते नहीं। कुज्ञान में दुख है, दुख है, पैसा मिला ऐसा लक्ष्य जाता है वह दुख है, और वो भी वो कुज्ञान से नहीं आ रहा ये कह रहे। वह तो आनंद स्वरूप की विपरीत भावना है। आहा हा, यहाँ ज्ञान सामान्य लिया है। वो परसों देखा था ना, ये जो क्षोभशम ज्ञान की पर्याय है, वह भी जो जैसा क्षोभशम लेके आया ने क्या, वैसे उसने ज्ञानावरण का अनुभाग हीनाधिक बांधा है, तो उसका उघाड़ लेके आया है, वैसा वो उसके विकल्प आएगा, वैसे बुद्धि होगी, वैसा सीखेगा, और पैसा भी पूर्व का पुण्य का जैसे उसके अनुसार आएगा। और मानता क्या है, मैंने ऐसी लौकिक पढ़ाई की, हाँ उसके कारण मुझे पैसा मिल रहा है। आजकल बच्चे भी ऐसा सोचते हैं ना, क्या पढ़ना चाहिए तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कौन सी लाइन में पैसा अधिक है, कहाँ, वो बहुत सियाने हो गए। यहाँ ज्ञान सामान्य लिया है, वैसे आनंद रूप सामान्य रूप आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद रूप सामान्य आत्मा है। ज्ञान प्रधान है ना, इसलिए ज्ञान की बात है। देखो ये ज्ञान है वो जीव का प्रकट लक्षण है। आप कहेंगे आनंद भी जीव का स्वभाव है, हाँ परंतु अभी दुख रूप परिणाम चल रहा है। तो जानना 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 जानना, ये अपने को ख्याल में आता कि ये मुझे जानने में आ रहा है। आप कहेंगे आप क्या बोलते, कुछ नहीं जानने में आ रहा है, ये हमको नहीं समझ रहा है। तो ये नहीं समझ रहा है वो किसको समझा, इतना तो अपने को बाजू को नहीं पूछना पड़ता है बाजू वाले को कि मैं नहीं समझ रहा हूँ क्या ये बात सही है, ऐसा उसको नहीं पूछते हैं, हम स्वयं अपने से जानते हैं। तो कहते ये जानना जानना जानना, ये ज्ञान उसको प्रधान लक्षण कहा उसका। ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव पर महाविकास से व्याप्त होकर, इन्हें ये क्या कहा, सामान्य पर ये विशेष जो है केवल ज्ञान वो विराज उसमें व्याप्त होकर रहता है, केवल ज्ञान होता है, वह महाविकास पूर्ण विकास हो गया, जैसे पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र में पूर्ण विकास है, चंद्र का पूर्ण विकास है, हा हा, वैसे भगवान आत्मा में केवल ज्ञान होता है, वह पूर्ण विकास हो गया। अब यही रुकेंगे हम। छावाणी
के ज्ञान दे सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अरविंद भाई
नमो 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 नमो